नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर, दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। चल तू अपनी राह पथिक चल, होने दे होता है जो कुछ, उस होने न होने से क्या, तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल तू अपनी राह पथिक चल, मेघ उमड़ते हैं अंबर में, भंवर उठ रहे हैं सागर में, आंधी और तूफान डगर में, तुझको तो केवल चलना है, चलना ही है तो फिर डर क्या, तुझको 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 विजय पराजय से क्या। अरे थक गया क्यों, बढ़ता चल, उठ संघर्षों से लड़ता चल, जीवन विषम पंथ चलता चल, खड़ा हिमालय हो यदि आगे, चढ़ू या लौटू या संशय क्यों, तुझको 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 विजय पराजय से क्या। भट्टी का आज का कितवा 31वां दिन, यात्रा जारी रखनी है। चल तू अपनी राह पथिक चल, होने दे जो होता है जो कुछ, उस होने न होने से क्या, तू चालू रख। जो भी नए अभियान नई क्रांतियां होगी उसमें संघर्ष होगा, हलचल होगी, बेचैनी होगी, वो सब होगा जो अब तक हुआ नहीं था। क्योंकि जब तक बेचैनी नहीं, जब तक हलचल नहीं, तब तक क्रांति होती ही नहीं। इंटेंस एक्टिविटी के बाद ही शांति आती है, स्थिरता आती है। पहले से ही स्थिरता है तो शायद परिवर्तन नहीं। भगवान वाच है कुमारों के प्रति, कुमार अर्थात कुछ भी असंभव नहीं, कुमार अर्थात कमाल करने वाले। तो हमारी यात्रा कहाँ तक पहुंची है? 39 तक। जब तक इतिहास का अध्ययन नहीं किया जाए, तब तक अतीत में हुई हुई गलतियां फिर हम दोहराते रहेंगे। जो अतीत में हुआ है उससे हमें सीखना है, जो अतीत में हुआ है उसको फील करना है, जो अतीत में हुआ है उसको अभी जीवन में लाना है। जो सबक, जो पाठ, जो लेसन्स पास्ट ने पढ़ाए है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ के इतिहास को भूल जाओ, हमारे अपने जीवन के इतिहास को यदि हम देखें तो इस जीवन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हर परिस्थिति हमारी टीचर रही है। हम दूसरों से इतना नहीं सीखते जितना अपने ही जीवन में आई हुई परिस्थितियों से सीखते हैं। इतनी ठोकरें खाई है फिर भी ठाकुर नहीं बने, और वही ठोकर फिर खा रहे हैं। गलती तो करना है, छूट है गलती करने के लिए, पर एक ही शर्त है, वही वाली गलती फिर ना करना, नई गलती करो कुछ। पर हम लोग नई गलती नहीं करना चाहते, वही पुरानी गलती। एक स्कूल में अचानक सरप्राइज विजिट होती है, स्कूल के इंस्पेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोर्ड पर प्रश्न लिख देता है। स्कूल के जो टॉप मोस्ट 3 विद्यार्थी है, जो हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं, वो एक एक आओ इसका उत्तर लिखो। पहला विद्यार्थी आता है, उत्तर लिखता है, जाता है। जो फर्स्ट आता है हमेशा, फिर सेकंड नंबर में जो आता है वो आता है, वो लिखता है। फिर जो थर्ड नंबर में आता है वो डर डर के आता है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर देखता है और फिर उसे पता पड़ता है, अरे तुम तो वही हो जो पहली बार आए थे, जो फर्स्ट है, तुम वापस 3 नंबर में क्यों आ रहे हो? वो कहता है कि गांव के बाहर क्रिकेट मैच चल रही है, इसलिए जो 3rd नंबर का विद्यार्थी है उसने मुझसे कह के कहा कि मेरी जगह पर कुछ काम हो तो तुम कर लेना, अगर आवश्यकता पड़ी तो, इसलिए मैं फिर आ गया। इंस्पेक्टर एकदम गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है स्कूल में, कोई किसके जगह पर बैठ के काम कर रहा है, ऐसे कैसे स्कूल है ये? वो टीचर को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो यहां पे, आपको देखना चाहिए, ये झूठ बोल रहे हैं बच्चे। वो कहता है मैं स्कूल का टीचर नहीं हूं। स्कूल का टीचर क्रिकेट मैच देखने गया है जो बाहर हो रही है गांव के। कहता है टू मच, सीधा हेडमास्टर के पास, ये हो क्या रहा है स्कूल में, टीचर्स बच्चे झूठ बोलते हैं, टीचर्स भी झूठ बोलते हैं, कैसे शिक्षक है आपके स्कूल के? वो कहता है मैं अपना रिपोर्ट गलत लिखूंगा, वो लाओ रजिस्टर सारा लिखूंगा उसके ऊपर। वो कहते एक मिनट रुको। यहाँ का हेडमास्टर मैं नहीं हूं, वो तो क्रिकेट मैच देखने गया है। तो कहते मुझे क्या करना है, मैं भी थोड़ी ना यहाँ का इंस्पेक्टर हूं। जो आने वाला था वो तो क्रिकेट मैच देखने गया है। तो ये जो संसार है इसमें इसी तरह की शिक्षाएं हैं। तो ऐसे संसार में सत्य की शिक्षा खो गई है। जब सत्य सिखाने वाले ही सत्य में स्थित नहीं है तो विद्यार्थी सत्य को कैसे धारण करेंगे? तो ऐसा ही है संसार, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ऐसे संसार में एक ऐसे स्कूल की स्थापना, ऐसे संसार में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना, ऐसे संसार में एक ऐसे समूह, एक ऐसे कम्युनिटी की, एक ऐसे कम्यून की स्थापना जो है बहुत छोटा सा कम्यून पर वो विश्व कम्यून बनने वाला है। बहुत छोटी सी कम्युनिटी, कराची स्मॉल कम्युनिटी टर्निंग इनटू वर्ल्ड कम्युनिटी, जो कि विश्व की कम्युनिटी बनने वाली है। है बहुत छोटा संगठन, परंतु वो वैश्विक संगठन बनने वाला है। तो वहाँ की नींव कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। वहाँ के एक एक विद्यार्थी विश्व का आधार बनने वाला है। एक एक स्टूडेंट स्कूल में जो बैठा हुआ है वो कितनों को संभालने वाला है भविष्य में। तो ऐसे की नींव कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। तो कल हमने देखा इन 31 दिनों में यात्रा हमने भारत से चालू की, फिर सिंध में आए, हैदराबाद में आए, साक्षात्कार, लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन, साक्षात्कार, कश्मीर रिट्रीट, पोस्ट कश्मीर रिट्रीट, फिर सत्संग, और फिर उसके बाद में ओम हाई स्कूल, उसके बाद में एंटी ओम मंडली, भाई बूंद कम्युनिटी, जिसका दूसरा नाम है भाई बूंद कम्युनिटी, फिर उसके बाद में छोटे छोटे विघ्न, बड़े बड़े विघ्न, और विघ्न आए चले गए। सब कुछ हो रहा है, पर इस बीच में बहुत सारी सेवाएं भी हो रही है एक सूक्ष्म रीति से, क्योंकि ये जो डेट्स है ये सब उसी समय की डेट्स है जब ये सारी हलचल भी चालू है एक तरफ। तो अर्थात जो संडे की मुरली में भी था, जीवन में कितनी भी हलचल चालू रहे पर सेवा को नहीं छोड़ना है, जो दिनचर्या है उसको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी होता रहे, अमृत वेला जारी रहे, मुरली चिंतन चालू रहे, और सेवा जो रूटीन सेवा है उसको छोड़ना नहीं। ये सोचना कि ये सेवा छोड़ के मैं थोड़ा योग करूं या फिर उसका चिंतन करूं परिस्थिति का, उससे नहीं होगा। एक तो ये भी हो सकता था कि ये सारे लोग बैठ जाए और ये जो एंटी ओम मंडली वाली है इनको सकाज देते बैठे, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको हम क्या करें, इनको जाके समझाए, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के उद्धार का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। स्वयं में अंदर इतनी करुणा भर दो, इतनी करुणा भर दो कि ये सब भी करने की जरूरत ना पड़े, वो सहज हो जाए। जैसे उदाहरण दिखाए अंगुलीमाल, क्या करता था वो, उंगलियां काटता था। 999 हो चुके थे, एक बाकी थी, और एक के समय कौन मिल गए, बुद्ध मिल गए आते हुए। काम अभी पूरा होने वाला ही है पर गड़बड़ हो गई पूरी, बुद्ध के संपर्क में आते ही परिवर्तन। अब रियल स्टोरी तो इसके आगे है, अब वो खुद ही भिक्षु बन गया और बहुत कम समय में बड़ी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली, और फिर वो जा रहा है शहरों में, गांवों में, लोग उसे मार रहे हैं, लोग उसे, क्योंकि ये कौन है, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी को उसने मारा है, तो अपराधी है। पर वो जा रहा है, पर वो उनसे माफी भी नहीं मांग रहा है। एक तो ये अवस्था थी कि मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानी था, अब मुझे ज्ञान मिल गया है, अब मैं ज्ञानी हूं, ये भी नहीं, अब उसकी ये अवस्था नहीं है, वो करुणा में स्थित है, अब परम अवस्था में स्थित है, वो माफी नहीं मांग रहा है उनसे। इतना हृदय में प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ वो उसे प्रेम की भी अभिव्यक्ति लग रही है उसको। ये अवस्था, ये उस जो अवस्था है कि मैं माफी मांगू और फिर उसको सकाश दू, ये भी एक नीचे की अवस्था है, इसके भी ऊपर अवस्था है। ब्रह्मा जाके किसी के पास दादा लेखराज ने कुछ ये नहीं कहा कि तुम मुझे ऐसा ऐसा करते हो, मैं तो बहुत अच्छा हूं, भूल गए मैं पहले क्या था, तो तुमको नहीं लगता मेरे में कुछ हुआ है चेंज, जरूर कोई शक्ति ने ओवरटेक किया है, ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया जाके कि मैं तो दूसरा था ना, कुछ तो हुआ ना, और जो हुआ वो मेरा नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये अवस्था, फिर वो सारे हंगा दंगा दंगे सब हुए और फिर कराची आ गए, और कराची में हमने देखा बहुत सारे बंगले ले लिए और वहां रहने लगे, अब संसार की निगाहों से दूर, संसार की आवाजों से दूर तपस्या चालू हुई। द डीप स्टडी बिगिंस। स्टडी कहाँ होती है, एकांत में। स्टडी कहाँ होती है, मौन में। मुरली का अध्ययन, मुरली का चिंतन कहाँ करना होता है, एकांत में, चुपचाप। संगठन में डिस्कस करना उसके अपने फायदे हैं, पर रियल स्टडी जो होती है उसके लिए क्या चाहिए? अत्यंत एकांत, एक मौन की अवस्था चाहिए, तो ही स्टडी होती है। और एक चीज, जो एक एक बंगला खरीदा था, एक किताब में एक एक का रेंट भी लिखा हुआ है, 275 रुपीस पर मेंशन। वो एक एक जो बड़ा बड़े बंगले थे उसका 275 हर महीने का उसका रेंट था। इसलिए वो जो भाईबुन कम्युनिटी वाले थे उनको ये देखकर बड़ी खुशी होती थी कि एक न एक दिन इनके पैसे ख़त्म तो होने ही है, क्योंकि सोर्स कोई है ही नहीं इनकम का। और उन्होंने अखबार में ये भी डाल दिया था कि इनको कोई भी चंदा डोनेशन नहीं देना। कराची में ही क्यों गए ये लोग, ये भी एक दूसरा प्रश्न है। इसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। कुछ रिलेटिव्स है, अगर विश्व रतन दादा से कहो पूछो तो वो कहते मेरे लिए आए हैं। क्यों आए? मेरे लिए, क्योंकि उनका जन्म ना तो कराची में हुआ ना तो हैदराबाद, वो कहीं बीच में एक गांव में थे और उनके पिताजी टीचर थे, ट्रांसफर होके कराची चले गए। और वो गए भी क्यों यहाँ पर? क्योंकि रोज अखबारों में इतना पढ़ते थे, इतना सब कुछ विरोध भी लिखा हुआ है, अच्छा ही लिखे है, इसका मतलब यही देखने के लिए क्या ऐसे वास्तव में इतने खराब लोग हैं संसार में, इतना जिनके विरोध में लिखा हुआ है ये देखने गए। और वो तो है ही, फिर जो इसमें अंदर घुसा, ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बार आने के बाद में मुक्ति असंभव है। वो तब भी सही था और अब भी सही है, एक बार जो इसमें आया वो गया। वापस अब बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं, स्वर्गवासी। इसलिए उस दिन भी वो बुद्ध की स्टोरी सुनाई थी ना, जो पूछने अभी पूछ लो। तो अभी रियल साधना यहां चालू हुई, और वो साधना में क्या क्या था, जैसे हमने देखा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बन गए, बहुत सारी सेवाएं चालू हो गई। तो यहां पर रियल साधना चालू हुई, वो रियल तपस्या, वो रियल साधना क्या थी उसकी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली साधना थी मर्जीवा जन्म, मर्जीवा जन्म। जैसे किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो कई बार क्या होता है, पेशेंट जब जागता है उसको याद नहीं रहता है, याददाश्त खो जाती है, एमनेजिया हो जाता है एक्सीडेंट होने के बाद। बड़ा एक्सीडेंट अगर हो जाए तो याद नहीं रहता है। उसी तरह मृत्यु सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। मृत्यु क्या है? अपघात है, एक बहुत बड़ा अपघात। इसके लिए मृत्यु के बाद जब नया जन्म होता है कुछ भी याद नहीं रहता है, पुराना। हाँ, कोई कोई सोल आत्माएं होगी जिनको याद आता है, पर अधिकतर कुछ भी याद नहीं आता है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, सब क्लीन। और आना भी नहीं था, ये प्रकृति ने बहुत अच्छा नियम बना दिया है। अगर किसी को याद आ जाए, अभी अभी शादी हुई, याद आ गया उसका जो पति है वो उसका पिता था, मुश्किल हो जाएगी वो लोगों को। इसलिए ये नियम प्रकृति का अच्छा है कि हमें कुछ भी याद नहीं आता है। तो वो एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, याददाश्त कई बार भूल जाती है, मृत्यु महा एक्सीडेंट है। और मर्जीवा जन्म परम अपघात है। एक है अपघात, एक है महा अपघात, और एक है परम अपघात, सुप्रीम एक्सीडेंट। सुप्रीम एक्सीडेंट अर्थात पुराना जीवन खत्म, नष्ट, पुराने जीवन की कोई भी बात याद ना आए, परंतु वो सारे संस्कार हमारे साथ चलते हैं। ये मेरी बचपन की आदत है, ये हमारे घर की आदत है। हमारे घर में ना ओबेसिटी हेरिडिटरी, ऐसे ही कहते हैं जितने मोटे लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये तो हमारी मम्मी भी ऐसी थी, उसकी मम्मी भी ऐसी थी, एक बहुत अच्छा कारण मिल गया है। और छोटा सा बच्चा है, बेटा, वो तो उससे भी बड़ा है, वो बैठा है पॉपकॉर्न खाते हुए, वो जंक फूड खाते हुए, वो भी हेरिडिटरी है। कोई ये नहीं मानता है कि ये हमारी गलती है। यहां पर भी मर जीवा जन्म अर्थात परम अपघात, मर जीवा जन्म अर्थात इसके पहले जो कुछ हो गया है, फुल स्टॉप योगी भव, उसकी कोई भी बात याद ना आए। अब तक जो कुछ भी हुआ होगा, यहां तक कि अभी तक के ब्राह्मण जीवन में भी अगर कोई गलतियां हो गई है, हर जीवन अमृत वेला एक पुनर्जन्म है। महात्मा गांधी ने लिखा है कि मैं रोज सुबह रात को सोता हूं तो सोचता हूं मर गया, सुबह उठता हूं तो सोचता हूं नया जन्म। अभी अभी जन्म लिया है, अभी अभी ये दुनिया नहीं है, इस भाव से कि आज से नया जीवन चालू हुआ है। अब तक का कल जो कुछ हुआ, अच्छा बुरा जो भी, खत्म। ना उसका वर्णन, ना उसका विस्तार, ना इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तारीफ निंदा स्तुति जो कुछ हो रहा है, सब कुछ खत्म। नया आज नया दिन है, नई सुबह की नई किरण आज है। तो पुनर्जन्म अर्थात मर्जीवा जन्म अर्थात केवल ये सोच लेना, अब तक का नहीं, हर दिन आज का जो दिन है, क्या तारीख है आज, 12 मार्च, 11 मार्च तक जो कुछ था वो पास्ट बर्थ, भूत, ये भूतों की दुनिया है, कौन सी, अतीत की, फुल स्टॉप। अब नया चालू करो। हाँ, इससे सीखना जरूर है, पर इसने बहुत सबक सिखा है, वो सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर बाबा ने जितने यज्ञवत्स है, कितने हैं, लगभग 300, इनको एक ही शिक्षा दी कि अभी तुम्हारा संसार से संबंध समाप्त, क्योंकि ये सारे लोग कौन लोग हैं, अधिकतर वो थे जिन्होंने सब कुछ देख लिया था, सारा वैर विरोध देख लिया था, सारे सहन किया था, कितनों ने मार खाया था, कितनों ने कितना अत्याचार सहन किए थे, वो पति की सच्चाई देख ली कितना वो झूठा है, वो माँ बाप की सच्चाई देख ली, वो समाज की सच्चाई देख ली, ये वो समाज है, वो न्यूज़पेपर में सारी रोज की न्यूज़ देख ली, ये वही मीडिया है, सब झूठ, सब मिथ्या। इसलिए एक वैराग सा है मन में, और जब तक ठोकरे नहीं खाता आदमी तब तक वैराग नहीं आता उसको। केवल पढ़ने से या दूसरों के अनुभव से बुद्ध को वैराग आ गया, बुद्ध ने ये देखा वो देखा, ठीक है, उससे हमें क्या, खुद ठोकर जब तक नहीं खाता है, जब खुद निगेटिविटी का अनुभव नहीं करता तब तक अटैचमेंट चालू रहता है। ठोकर लगनी चाहिए, बहुत जरूरी है, कंपल्सरी। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, कौन सी यूनिवर्सिटी जहां घूसे मिलते हैं, धक्का बुक्की, उस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो मर्जीवा अर्थात आज नया जीवन, आज से नया जन्म, क्योंकि ये सारे अनुभव से क्या सीखना है, कुछ भी नहीं मिला इससे संसार से, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो सबको सिखाया गया, वो क्योंकि परिवार के परिवार थे वहां पर कुछ, तो अब ये जो लौकिक संबंध है, पति पत्नी बच्चे पूरा परिवार है, इनको इस रूप से देखना ही नहीं है, इनको किस रूप से देखना है, ये एक आत्मा है। और आत्मा से भी एक और एक इसमें एक सूक्ष्म बात है, जब भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि ये एक सेट ऑफ संस्कार्स है, एक कौन है, एक बंडल है संस्कार्स का, एक नए संस्कार का। मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा हूं, एक नए संस्कार के बंडल, एक यूनिट से, और इसका सब कुछ मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब अलग है। इसके लिए हर एक को स्वीकार करके चलना, क्योंकि दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, और उससे भी इंपॉर्टेंट, दो व्यक्ति कभी भी एक दूसरे को जान नहीं सकते। पति पत्नी 50 साल एक साथ रहते, पत्नी कह सकती है मैंने इनको जान लिया, पति कह सकता है मैंने इनको जान लिया, नहीं कह सकते। हम किसी को जान ही नहीं सकते, क्योंकि कितना भी हम कहें कि उसको जान लिया, कुछ बातें तो ऐसी है, शायद वो भी नहीं जानता है। तो इसीलिए ये भाव रहे कि नए आत्मा से इंटरेक्ट करते समय ये एक नए सेट ऑफ संस्कार है, और दो प्रकार के संस्कार, एक उसके अनादि आदि और एक वर्तमान के। बाबा ने कहा वर्तमान को देखो ही नहीं, क्योंकि वर्तमान के संस्कार में बहुत हलचल है, पर वो कुछ भी हो फिर भी बहुत डीप उसके अंदर पॉजिटिविटी है। इस यज्ञ में 3 स्टेजेस है जिसकी हर आत्मा को उससे गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेज पूर्ण पॉजिटिविटी, नए नए ज्ञान में आए, बाबा 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 मधुबन मधुबन मधुबन, इतनी पॉजिटिविटी, ड्रामा क्या, भाग्य, ब्राह्मण परिवार, टोली, बाबा, दादिया, मुरली, स्वर्ग से अच्छा ऐसा परिवार और कहाँ ही नहीं, कहीं पर भी नहीं। सारी भटकन दूर हो गई, अतिंद्रिय सुख में उड़ रही है, पाना था सो पा लिया और कुछ बाकी नहीं। तार मिली है अलीफ को, हुआ रेल का राही, ट्रेन में बैठे बैठे जैसे मैं ही हूँ जो जा रहा है वापस संसार उधर छोड़ के बाबा मिलन में। बाबा आहा आहा, इतनी खुशी, क्या करूं इस खुशी का। एक एक को पकड़ के ट्रेन में जाते समय कोई एक व्यक्ति ना छूटे, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको ज्ञान दे के सुन रहूंगा। प्रजा बनाने का मैंने खुशी इतनी है कि जो मुझे मिला सबको मिलना चाहिए, जो मुझे मिला कोई भी ना छूटे, एकदम जोश, क्या करूं और क्या नहीं। कापारी खुशी, कापारी नशा, ईश्वरीय नशा, खुमारी इलाही मस्ती, मौलानी मस्ती, नारायणी नशा, इंटॉक्सिकेशन, वो एक अवस्था है। फिर एक ये अभी थोड़ा सा ब्रैकेट कंप्लीट नेगेटिविटी, यहां से आत्मा फिर इस डार्कनेस में प्रवेश करती है। जब वो यहां वो सब कुछ देखना चालू करती है जो संसार में है या उससे भी कंप्लीट नेगेटिविटी, और यहां पर ही कई लोग दुखी हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं और यहीं अटक के रह जाते हैं और इसी को सत्य मान लेते हैं। और वो जो पहली अवस्था थी वो तो अब गई, उसका तो अब कोई नाम निशान नहीं है, वो पूरा हो गया। अब यहां है, यहां ज्ञान योग सब भस्म हो जाता है, खत्म। और रहता है इसलिए कि मुरली में बैठो, जाओ, कुछ लिखो, वो सब ऊपर से सब रहता है, अंदर से सब खत्म हो गया है, क्योंकि इतना नेगेटिविटी देख ली है, क्योंकि यहां व्यक्तियों को देखा, और व्यक्ति तो वही है कि कपड़े बदल गए और बैच लगाने से संस्कार थोड़ी बदलते हैं। बीके बना दिया किसी को, ब्राह्मण बन गया, कोर्स हो गया, उससे क्या, वो तो व्यक्ति तो वही है, आदत वैसी की वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो पहले उधर थी अब इधर है, सेम। हाँ, खाली उसको टिकट मिल गई है, पास एक मिल गया है, वो उधर एंट्री हो जाएगी उसकी स्वर्ग में, परंतु कहाँ उसको पद मिलेगा। एक दूसरा प्रश्न है आप सबसे, इस सृष्टि में दो बार विनाश होता है, एक अर्धविनाश, एक पूर्ण विनाश, त्रेता के अंत में अर्धविनाश और संगम के बाद पूर्ण विनाश। तो ये जो अर्धविनाश होता है, इसमें क्या देवताएं सफर करेंगे, क्या उनको दुख होगा? होगा, होगा, वो भी मरेंगे। क्यों, कौन से, जो अंत में आने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि त्रेता कब अंत हुआ है इसकी कोई तारीख थोड़ी ना है, तो वो जो लास्ट में आने वाले हैं, उन्होंने तो झूठ बोलना, पाप करना वहीं से चालू कर दिया है, तो दे विल सफर, महल टूटेंगे और कोई दबेगा भी नीचे, जरूरी है कि सफर महल टूटे और हम सुरक्षित रहे क्योंकि हम देवता है, ऐसे थोड़ी ना है। तब तक तो बहुत पतितपना सब चालू हो चुका है, यहां पर ही यहीं पे सब कुछ चालू हो गया है, तो दे विल ऑल्सो सफर। और ये कौन आत्माएं होगी, ये यहां वाली जो इस डार्कनेस में है, जिनके मन में पूरी निगेटिविटी समाई हुई है, जो दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, ना खुद ज्ञान योग करते हैं, और हम नहीं करते तो दूसरे क्यों करेंगे, हम नहीं करना चाहते तो दूसरे क्यों करें, इसमें दुख होता है। पर ये हुआ भी क्यों, क्योंकि इतना सब देख लिया है इसकी वजह से, सब नेगेटिव, हर चीज में पॉलिटिक्स, हर चीज में गड़बड़ है, हर चीज में कुछ ना कुछ। परंतु यही सत्य नहीं है, हमने कहा तीन स्टेजेस है, तीसरी स्टेज है संपूर्ण पॉजिटिविटी की, यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते, दादियों की ये स्टेज है, वो भी इसी यत्न में, वो भी सब यही है, परंतु अब प्रभावित, उनको भी ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं है, हर चीज पता है उनको, पर वो सब पता होते हुए भी कंप्लीट निश्चय, कंप्लीट पॉजिटिविटी। तो हर आत्मा जो इस यज्ञ में प्रवेश करेगी उसको थ्री स्कूल से गुजरना पड़ेगा, खाली एक लक्ष्य रखना है कि ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, सेकंड वर्ग में, सेकंड कक्षा में यहीं नहीं रुक जाना, यहां भले अंधकार दिख रहा है पर ये ऊपर का है, और ये अंधकार भी जरूरी है, किस लिए जरूरी है, एंटी ओम मंडली कमेटी की क्यों आवश्यकता है, वो नहीं होती तो ये इतने मजबूत होते, इतने वैराग आता, लोकलाज से परे हो जाते? बिल्कुल नहीं। ये इनकी भी बहुत आवश्यकता है। किस लिए? एक तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, दूसरा हम परिपक्व हो रहे हैं, तीसरा धारणाएं मजबूत हो रही है, वैराग पैदा हो रहा है, और जो हार से अहंकार उत्पन्न हुआ है, नहीं जीत से जो अहंकार उत्पन्न हुआ है उसे तोड़ने के लिए माया की बहुत आवश्यकता है। निंदा की आवश्यकता किस लिए है? जो स्तुति से अहंकार उत्पन्न हुआ है कि मेरे जैसा योगी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है कोई मैं ही मैं हूं, क्या करूं, कितनी महिमा करूं खुद की, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, और जो मेरी महिमा करता है वो तो एकदम गले लगा लेता हूं उसको। आप एकदम योगी जैसे दिखते हो, एक मिनट बैठो, और क्या क्या दिखता हूं बैठो टोली खा के जाओ, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे आपको बाकी आते रहना, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर, बाकी यो के पास नहीं है, तुम रखना पर अच्छी अच्छी बात है, ज्ञान की चर्चा होती रहे, इससे भी फायदा। ये जो अहंकार, हर स्तुति अहंकार पैदा करती है, हर सफलता अहंकार पैदा करती है, सेवाओं का विस्तार अहंकार पैदा करता है कि हमने ये सेवा की, हमने इतने कुमारों को तैयार किया, इतनी कुमारियों को तैयार किया। इस अहंकार को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हथौड़ा, थोड़ी सी निंदा चाहिए। इससे निंदा व्यक्ति को अंतर्मुखी बना दी और स्तुति बाह्यमुखी बना देती है। ये निंदा का बड़ा अच्छा गुण है। निंदा क्या करती है? अंतर्मुखी, चाहे वो निंदा सच हो या झूठ हो उससे कोई मतलब नहीं, पर अंतर्मुखी व्यक्ति बनता ही है। नो नियर रखना चाहिए, एकदम घर के अंदर रूम पार्टनर ही बना के रखो, घर के अंदर, घर के पास नहीं, रूम पार्टनर निरंतर जो जगा के रखे, जो तुम्हारी पर निरंतर ध्यान रखे, क्या कर रहे हो क्या नहीं करते हो, मतलब तुम सो ही नहीं सकते तीसरी जो स्टेज है वो है पूर्ण पॉजिटिविटी। ये वो अवस्था है, ज्ञान की संपूर्ण अवस्था, ज्ञान की परिपक्व अवस्था, सब कुछ देख लिया उसके बाद में भी कोई मन में नेगेटिविटी नहीं है, सभी रावण पर भी कोई गुस्सा नहीं है, सब ड्रामा के एक्टर्स है, सबका पार्ट मिला हुआ है, और ये साक्षी स्थिति है तीसरी अवस्था, कंप्लीट पॉजिटिविटी। इसलिए सेकंड अवस्था में बिल्कुल भी फंसना नहीं है। अगर है अभी यहां तो ये ध्यान रखना है कि इसके आगे भी मन की एक स्थिति है, अभी हलचल हो रही है यहां देखकर सब कुछ कि ये लोग ऐसा करते हैं, ये देखकर आघात हो गया है। अज्ञानी करते हैं ये देखकर कुछ नहीं होता है, पर ज्ञानी करते हैं ये देखकर दुख होता है। और ज्ञानी भी वही जो सुबह सेंटर में क्लास में बाजू में बैठा था, और जिसमें बाबा ने और हमने देखा था, वो लिख रहा है बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बोलना है, हमने ऐसा करके देखा भी था तिरछी नजर से, पॉइंट्स नोट कर रहा है वो, और वही दोपहर में ऐसा सुना दिया हमको कि बात मत पूछो। क्या उसको ये बताएंगे कि सुबह क्या सुना था? ज्ञानियों को ज्ञान सुनाओ तो एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो ये तीन अवस्था, तो बाबा ने सबसे पहला पार्ट कौन सा सिखाया सबको? ये जो बच्चे थे अभी रियल साधना यहाँ चालू हो गई है, सब वैराग की अवस्था में है, वैराग का बीज तो सब में बोया हुआ है मर्जी वजन में। दूसरा बताया जो साथ में रहते हैं लौकिक परिवार वाले भी, वो सब भी कौन है? आपस में पति पत्नी ये सब समझना ही नहीं, क्या समझना है? आत्मा है बस, ये नहीं समझना ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, मेरा समझा कि गए, ये दूसरा। तीसरा पार्ट जो सिखाया वो है सेंस कंट्रोल, कर्मेंद्रियों पर जीत, कोई भी विकर्म तुमसे ना हो, अगर होगा तो 100 गुना दंड है। सबसे ज्यादा विकर्म कौन सी कर्मेंद्रिया करती है? काम इंद्रिय। सबसे ज्यादा विकर्म किस इंद्रिय से होते हैं? सबसे गहरे सबसे डीप काम इंद्रिय। आंखें, दृष्टि खराब हो गई उसे पतित नहीं कहते, मुख से कड़वा बोल दिया उसे पतित नहीं कहते, कानों से कुछ सुन लिया उसे पतित नहीं कहा जाता, हाथों से किसी को हाथ लगा दिया उसे पतित भी नहीं कहा जाता। पतित अर्थात काम इंद्रिय से होने वाले विकार। सभी ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा उत्तेजना काम इंद्रियों में, टंग, टेस्ट, स्पीच, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, आंखें उसके सामने कुछ भी, हाँ ये सब साधन हो सकते उत्तेजना के, स्टिमुलेशन है ये, ये सब साथी है, बट इंटेंस, सबसे इंटेंस वो है काम इंद्रियों। धन्य है वो आत्माएं जिनको काम इंद्रियों की उत्तेजना का कोई अनुभव ही नहीं, वो उस विकार में कभी गया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं। दादी प्रकाशमणि कहती थी ना, क्या कहती थी कि मैंने कभी भी कोई सिनेमा कभी देखा ही नहीं, थिएटर ही पता नहीं क्या है। और सारे विकार, काम और हिंसा, बस ये दो ही चीज है जो व्यक्ति सीखता है। कहाँ से? मोबाइल से, इंटरनेट, यूट्यूब, सिनेमा, ये सब यहीं से आया है। जब से यूट्यूब आया तब से जितना संसार में विकार बढ़ गया, खुद उसका जो CEO है, CEO गूगल का, उसने ही लिखा है, उसने ही एनालिसिस किया है कि ये जब से आया, कब से, 2007 कब से आया ये, लगभग वही, तब से ही संसार में सब कुछ बढ़ गया है। इसलिए एक एक कर्मेंद्रियों को जीतना, साधना, आंखें, नाक, सब कुछ, सब साधना चालू होती है वहां से। इसलिए इस भट्टी के 3 रूल है। तीसरा है स्वाद को जीतना। स्वाद को जीतते जीतते धीरे धीरे रसेंद्रियों को जीतते जीतते जनेंद्रियों को जीता जाता है। 2005 में आया, 2005 14 फरवरी, ये जब से आया तब से संसार में विकार बढ़ गए। इसके लिए जिन्हें अच्छी ब्रह्मचर्य की साधना करनी है, वो जितना हो सके इन सब से जितना दूर रह सके रहे, कोई आवश्यकता ही नहीं है ये सब चीज़ों की, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो हमारे ऊपर है, हम क्या करते क्या नहीं करते। लोग कहते हैं हम क्लास सुनते हैं, सुनो, देखने की क्या जरूरत है? वीडियो चाहिए, किस लिए चाहिए वीडियो? देखो ये, देखो ये ठीक है, वो सामने वो देखते रहो बस, इधर देखने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड में क्या देखना है, ये लिखने का, ये देखते हो लास्ट में क्या बन जाता है बोर्ड, गोल 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 गोल, इसको देख के क्या करोगे, इसका कोई मतलब नहीं। यहीं से माया प्रवेश करती है, यहां जब आएंगे तब देख लेना बस। हमारी पसंदगी और नापसंदगी की बात नहीं है, यहाँ माया की बात चल रही है, वो माया का साधन बन जाता है। तो कर्मेंद्रियों को जीतना, बिना कर्मेंद्रियों को जीते कोई योगी बन ही नहीं सकता, चाहे कितना भी उसके पास ज्ञान हो। ज्ञान किसके पास नहीं है संसार में? बहुत सारी संस्थाएं हैं, कितना बड़ा बड़ा, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है उनके पास भी। जैन धर्म में तो इतनी स्ट्रिक्ट साधना है, पर फिर भी क्या वो कर्मेंद्रिय जीत बने हैं? नहीं, वो भी नहीं बने। जबान को कहाँ जीता है, रस को कहाँ जीता है? रसत जीते जगत जीते, जो रसों को जीतता है वो जगत को जीतता है। तो तीसरा बताया सेंस कंट्रोल, कोई भी विकर्म कर्मेंद्रियों से ना हो। चौथी बात निद्रा। बाबा क्या करते थे, रात को 2 AM राउंड, रात को 2 बजे चक्कर लगाते थे और देखते थे, ये देखो कितना योगियों जैसे सो रहे, जरूर बाबा की याद में सोए होंगे, और दूसरे देखो ये कैसे सो रहे, ये जरूर बाबा की याद नहीं किया इन्होंने, वैसे ही सो रहे, पैर उधर हाथ उधर घूम घूम के पता नहीं कहाँ से कहाँ, वर्ल्ड का नक्शा, थकिया कहीं और, हृदय कहीं और। योगी सोए तो स्थिर, जैसे कई बार कहा है महात्मा बुद्ध सोते थे, आनंद उनसे पूछता था कि आप रात में भी जागे रहते क्या, क्योंकि जहां हाथ रखा है सुबह उठ के देखता हूं वही है, सेम पोजिशन में सोए है, जहां सोए और सुबह उठे वही पोजिशन, ऐसे कैसे? वो कहता है आप करवट नहीं बदलते क्या, आनंद पूछता है, करवट भी नहीं बदलते? महात्मा बुद्ध कहते करवटे वो बदलते हैं जो बेचे ने। मैं अंदर से इतना शांत हो गया हूं कि करवटे बदलने की आवश्यकता नहीं, इतना मन स्थिर चित्त शांत हो गया है वैसी अवस्था में। तो यहां सीखने की बात है हम कैसे सो रहे। लोग कहते हैं हमारा अमृत वेले का टाइम फिक्स नहीं होता, ये होता है सो कैसे रहे, किस अवस्था में सो रहे, मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं, मोबाइल हाथ में है और कुछ कुछ करते हुए सो रहे हैं, ऑनलाइन में है और फिर सो रहे हैं, स्विच्ड ऑफ अगर आपको कोई काम नहीं है, कोई इमरजेंसीज नहीं है। और दूसरी बात, आपका जो कमरा है उससे भी अगर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर रहे तो बहुत अच्छा, वाइब्रेशंस क्रिएट करता है नेगेटिविटी, ए ब्लू लाइट निकलता है इसमें से, अगर जिनको इमरजेंसीज नहीं है, कोई रात में कुछ ऐसा होने वाला नहीं, मतलब कोई ऐसा ऑफिस का ऐसा कोई काम नहीं है कि आपको कभी भी बुलाया जाए, क्यों रखना है, स्विच ऑफ कर दो, या फ्लाइट मोड पर डाल दो, वाइब्रेशंस ही ना हो ना, ये सबसे बेस्ट है, ये सिंपल एकदम। तो किस अवस्था में हम सो रहे हैं? दूसरा, अगर जिस अवस्था में सो रहे हैं उसी अवस्था में उठेंगे, जो अंतिम संकल्प है वो प्रथम संकल्प बनेगा, जो देख कर सो रहे वही उठते ही सबसे पहले याद आएगा, जिसके साथ फोन पर बात करते करते सो रहे वही व्यक्ति की याद उठते ही आएगी। इसके लिए जितना हो सके रात को 8 बजे के बाद नो मोबाइल टॉक्स किसी से भी, अगर हाँ सेवा आवश्यक है, जरूरी है, मीटिंग है, प्लानिंग है, सेंटरों में कुछ कुछ होते रहता है सेवाएं, वो अलग, पर ऐसे ही बात करना हो सके तो आफ्टर 8 o'clock नो टॉक्स, फोन पर बातें करना बंद, हो सके तो बंद ही कर दो, वाइब्रेट साइलेंट, और जहां सोते हैं वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस ना हो, रूम में एब्सोल्यूट डार्कनेस। स्लीप हाइजीन में ये बताया था लास्ट पट्टी में, स्लीप हाइजीन में स्लीप के रूल्स है, क्या कहा जाता है, कोई भी जीरो लाइट कुछ भी ना हो, तभी ये मेलानिन सिक्रेट होता है यहाँ से, यहाँ का अंदर जो पीनियल ग्लैंड, मेडिकल रीजन है उसके। तो स्लीप फिल ये वेरी सतो प्रधान, सतोगुनी नींद। तो बाबा क्या करते थे, चक्र लगाते और देखते थे, ये थी चौथी बात। कुछ भी नहीं, नो नीड, कुछ भी नहीं, पूरा रूम में डार्क कर दो, जितना डार्क में सोएंगे, कई लोगों को डर लगता है, ये दूसरी बात, अकेले नहीं सो सकते, डर लगता है अंधेरे में, वो डर भी चला जाएगा। नींद अगर अच्छी चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए रूम का एटमॉस्फियर कैसा है, आवाज ना हो, हवा अच्छी हो, खिड़कियां खुली हो, सारा बिल्कुल बंद कमरा, ज्यादा से ज्यादा हार्ट अटैक्स वहां हुए हैं जो लोग बंद कमरे में सोते, नो एयर, कोई सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है एयर का, कई रूम्स ऐसे है कि वेंटिलेशन ही नहीं है, वेंटिलेशन में रूम्स दोनों तरफ खिड़कियां चाहिए, हवा आती रही जाते रहे कमरे में जहां हम सोते हैं, फ्रेश एयर, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नो लाइट्स, टोटल डार्कनेस, ये नींद स्लीप हाइजीन में आता है ये सब। आगे चौथा, उसके बाद में ये नाम पढ़ा अभी, यज्ञ पिता यज्ञ माता, जैसे कि ऊपर से नाम आया कि आज से ओम बाबा कौन है, यज्ञ पिता पिताश्री ब्रह्मा, और जो पुराने लिटरेचर है उसमें प्रजापति लिखा हुआ है कई जगह पर चित्रों में, प्रजापिता, और ओम राधा क्या है, सेनानी, वो क्या बन गई, यज्ञ माता। ये थी एक बात। अभी आखिरी और एक बात, लेटर्स, ये वही समय था जब क्या हुआ, लेटर्स लिखना चालू हुआ। कहाँ कहाँ लेटर्स लिखे गए, कहाँ कहाँ लेटर्स लिखे गए, ये 2-3 चीजें बता रहे हैं बस, फिर पूरा करते हैं। मार्च 13, 1939 में क्वीन एलिजाबेथ को लेटर लिखा है लंदन में, 39 में मार्च में, ये कौन सा समय है, 7th मार्च, 24 मार्च, सब हलचल का समय है, एक तरफ हलचल चालू है और दूसरी तरफ लेटर लिखे जा रहे हैं। फिर महात्मा गांधी को तार भेजा गई, राजगोपालाचार्य, आचार्य कृपालू जी, भोलाभाई देसाई, 5th मई 1939, किंग जॉर्ज 6, उस समय भारत का सम्राट कौन था, किंग जॉर्ज 6, जबकि विश्व युद्ध अभी सितंबर, कल बताया था रूल ऑफ 6, विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 का रूल क्या बताया, कब से कब तक चला, 6 साल 1 दिन, 1 सितंबर से 2 सितंबर तक, 39 से 45 तक, कितने लोग मरे, 6 करोड़, कितने लोग थे, किस किस के बीच था, 3 उधर 3 इधर, जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और सोवियत यूनियन एक तरफ, तो रूल ऑफ 6 है ये, 3 इधर 3 इधर, ये हो गए 6 करोड़ लोग मारे गए टोटल, 6 और 6 साल 1 दिन ये युद्ध चला। तो अभी संसार में युद्ध चालू है तब ये सब कर रहे हैं, सेवाएं चालू है, तपस्या जारी है, संसार में हलचल हो रही है। किंग जॉर्ज 6 को लेटर लिखा गया 2 मई 1947 में, ये थोड़ा आगे लिखा गया। फिर 23rd जुलाई 1938 में मिस पिगट को ये लेटर लिखा गया, वो कौन थी, स्टेट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स की हेड थी वो, उसको कहा गया कि आप लोगों को देखो जानवरों का अत्याचार ना हो, पर यहाँ तो बहनों पर अत्याचार हो रहे, उसको ये सब लेटर में बताया गया। फिर इंटरनेशनल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी रिलीजन की कोलंबो श्रीलंका में, उनको एक लेटर लिखा गया 1st अगस्त 1938। फिर महात्मा गांधी और टैगोर को अलग से लेटर लिखा गया 27 अगस्त 1938। फिर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे जिन्ना, उनको 1st अक्टूबर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद लेटर लिखा गया। फिर ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की जो हेड थी रानी राजवारे ग्वालियर में, उसको लेटर लिखा गया। लॉर्ड हेलिफैक्स को, सिंध के गवर्नर को, कराची के मेयर को इन्विटेशन कार्ड, बुकलेट, ब्रोशर, हैंडबुक, क्वेश्चनेयर, ये सब लिखा गया। और ये ओरिजिनल कुछ लेटर्स है ओम राधे की, सभी लेटर्स पर ओम राधे की साइन है, ब्रह्मा की साइन कहीं पर भी नहीं है। ये लेटर है महात्मा गांधी को लिखा हुआ लेटर, ये वायसराय को लिखा हुआ लेटर, ये अलग अलग लेटर्स है, क्वीन एलिजाबेथ को लिखा हुआ लेटर, इन्होंने प्रिंसेस एलिजाबेथ, एक्चुअली वो प्रिंसेस नहीं, प्रिंसेस तो उस समय छोटी थी 11 साल की, क्वीन, कल भी बताया ना जॉर्ज की जो वाइफ थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ, उसको मदर एलिजाबेथ कहते क्योंकि उसकी बेटी का भी नाम क्या था एलिजाबेथ, जो अभी भी है। क्वीन एलिजाबेथ तो 2002 में शरीर छोड़ दिया, और जो निर्मल शांता दादी उसको लंदन में जाके मिली थी, वो बक्कल वाली स्टोरी वो हम देखेंगे। दूसरी, फिर कहाँ का लेटर लिखे गए, किंग जामनगर, जोधपुर, मंडी, ये इनके राजाओं को लेटर्स लिखे गए, तो ये सारे लेटर लिखे गए। और दूसरी बात, ये एक चित्र मिला है, ये बाबा का चेस है जिससे दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा चेस खेलते थे, ओरिजिनल ये उसमें रखा हुआ है चेस। और एक ये दूसरा ये डायरी है, और ये चप्पल है जो पहनते थे, ये चप्पल है जो पहनते थे, इसमें लिखा है द चिल्ड्रेन कुड ऑलवेज हियर कमिंग विथ हिज वुडन स्लीपर, वो आते थे तो आवाज़ सुनाई देती थी लकड़ी का, तो खड़ा हो, तो ये अभी भी है। और ये एक लेटर है जो नलिनी बहन जी को लिखा था बाबा ने, हिंदी रिटन ओवर सिंधी, मतलब उसमें लिखा हुआ है हिंदी में भी ये, तो ये कुछ यादगार वगैरह यज्ञ की है। लेटर्स बड़े बारीक 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 है, पढ़ सकते हैं, हम भेज देंगे उसमें। और ये वो बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश, एंड ये ओम राधे की जो बुक है इज दिस जस्टिस, उसमें है बर्थ डेट है, उर्दू में भी एक है, इंग्लिश में भी है, 15 December 1884, दादा लेखराज खूबचंद कृपलानी, दादा का नाम विष्णु कुछ है, वो भी है एक जगह लिखा हुआ। पूरी ओम मंडली जो कमिटी है, हम कहते हैं 8 लोग थे, कि 8 लोग इतने बड़े इसको चला सकते, 8 नहीं थे, 11 हुए, बाद में 17, 18 लोगों के पूरे नाम सहित पूरी लिस्ट है उसमें, कमेटी जो थी धीरे धीरे 18 तक गई हो। तो ये सब डिटेल्स है कुछ, तो कहने का भाव लेटर्स लिखे गए, किनको लेटर्स लिखे गए, दूर दूर तक, दृष्टि देखो कितनी ऊंची, यहाँ तक कि ये अमेरिका के वहाँ पे भी लेटर्स लिखे गए, प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा गया जो ये विश्व युद्ध लड़ रहे थे, महात्मा गांधी को लेटर लिखे गए, बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है इधर, एक बहुत बड़ी इतिहास में घटना घटी है, पर किसी को टाइम नहीं था, एक्नॉलेज भी किया, बहुत अच्छा चलने दो आए है ना भगवान, आने दो, हम भेजेंगे बात दूसरों को, खुद नहीं आए। तो ये इससे सीखने की बात एक है, लेटर राइटिंग, ऐसा कोई एरिया ना हो जहां हम रहते हैं वहां जहां सेवा ना हुई हो, एक चार्ट बनाओ अपने एरिया का, मैप निकालो इंटरनेट से, जहां रहते हो उसमें सारे मेडिकल कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, चर्च, कौन सा एरिया है और कौन सा व्यक्ति है जो बचा हुआ है, जैसे इन्होंने कितना स्टडी किया होगा ये सब के लिए, इतना सब निकालने के लिए, उनका एड्रेस, फिर उनको लेटर, फिर अच्छा गोल्डन बॉर्डर, डेकोरेशन, हाथ से लिखना वो पूरा फॉर्मेट, उसका प्रूफ रीडिंग सब करके फिर भेजा होगा ना, ऐसे थोड़ी ना भेज देंगे क्वीन एलिजाबेथ को लेटर कितनी तैयारी की होगी उसकी, कितनी बार उसको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और ये इंग्लिश भी इतनी पावरफुल इंग्लिश है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है किसी इंग्लिश में, सारे लेटर्स इंग्लिश में लिखे गए, ओम राधे की हैंड राइटिंग है, नीचे साइन ओम राधे की है, तो बहुत बड़ा काम किया गया, मेहनत है तब सेवा होती है। साधन भी नहीं थे उस समय, तो हमारे पास तो सारे साधन है, फटाफट हम इंटरनेट से सारा ढूंढ लेते, पर तब जो किताबें लिखी गई हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, ये जो कल किताब दिखाई थी यहाँ पर इज दिस जस्टिस, कैसे लिखी वो किताब, इतना डिटेल, एक एक चीज का उसमें वर्णन है, पूरा एफिडेविट, ये फिर ये लेटर गया वो लेटर, सब सब वर्णन है, इतना डिटेल में कितना काम किया होगा ये लोगों ने बैठकर, एक किताब लिखना विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, ओम शांति।
अपनी राह पथिक चल, होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल तू अपनी राह पथिक चल, होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल तू अपनी राह पथिक चल। अंबर में भंवर उठ रहे हैं सागर में, आंधी और तूफान डगर में, तुझको तो केवल चलना है चलना ही है तो फिर डर क्या तुझको 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 विजय पराजय से। चल तू अपनी राह पथिक चल। अरे थक गया क्यों बढ़ता चल, उठ संघर्षों से लड़ता चल, जीवन विषम पंथ चलता चल, खड़ा हिमालय हो यदि आगे चढ़ूं या लौटूं यह संशय क्यों तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल तू अपनी राह पथिक चल, होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल तू अपनी राह पथिक चल।